जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद् भगवत गीता की जय गौर निताई की जय श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय बिजी थ्रू द बॉडी फ्री एज ए सोल हरी हरी शरीर से रहिए व्यस्त और आत्मा से रहिए मस्त हरि नाम जपते हुए ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ जय श्री कृष्णा न शस्त्र पर न शास्त्र पर न धन पर न ही किसी युक्ति पर हे प्रभु मेरा जीवन तो आश्रित है केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर हरि हरि बोल एवरीवन हरि हरि बोल जय श्री राधे कृष्णा हर हर महादेव जय माता की। तो फ्रेंड्स आज के सत्संग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और जो पॉडकास्ट पे हम लोगों को सुन रहे हैं आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड जैसे कि आप सबको पता है कि हम सब अपनी आध्यात्मिक यात्रा की तरफ कदम बढ़ा चुके हैं और इस प्रक्रिया में हमारा सरल भगवद गीता का कोर्स भी आरंभ हो चुका है, है ना, जो कि एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाला है हमारी आध्यात्मिक यात्रा में। तो घर बैठे बैठे हमारी ऐसी आध्यात्मिक यात्रा हमारी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हो चुकी है कि हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तैयार होने की जरूरत नहीं है, है ना, घर में बैठे बैठे हमारी ऐसी तीर्थ यात्रा हमारी आरंभ हो चुकी है। तो फ्रेंड सबसे पहले हम भगवान श्री कृष्णा का आह्वान करते हैं, भगवान कृष्णा से प्रार्थना करते हैं कि परमात्मा हमारी बुद्धि में विराजमान हो, अपनी विशेष कृपा हम पर बरसाएं ताकि हम सब उनकी वाणी को, उनकी इंस्ट्रक्शंस को और उनके गीत को अच्छे से समझ सके और सबसे बड़ी बात है उनके इंस्ट्रक्शंस को अपने जीवन में अपना सके और खुश रह सके। तो जैसे कि आप सबको पता है कि हम लोग चैप्टर 1 शोकग्रस्त अर्जुन इस अध्याय को कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम समरी करने वाले हैं, फर्स्ट चैप्टर शोकग्रस्त अर्जुन की समरी करने वाले हैं। तो जिसने नहीं किया हुआ है चैप्टर, बीच में छूट गए थे श्लोक, तो आज भी अगर आप समझ लोगे तो आपको समझ आ जाएगा फर्स्ट चैप्टर, है ना। तो फ्रेंड्स फर्स्ट चैप्टर डेडिकेट था सेटिंग ऑफ द सीन, है ना, मतलब महाभारत में जो भगवद गीता होने वाली है उसके लिए एक सीन क्रिएट हो रहा है फर्स्ट चैप्टर में, है ना। भगवान श्री कृष्णा एक सीन सेट कर रहे हैं जिसमें भगवान अर्जुन को कंफ्यूज करेंगे, मतलब बताया जाएगा इसमें कि अर्जुन कैसे कंफ्यूज होगा ताकि अर्जुन एक रोल प्ले कर सके कंफ्यूज ह्यूमन बीइंग की तरह, हम सब की तरह। हम भी देखो लाइफ में बहुत जगह कंफ्यूज हो जाते हैं जहाँ पे हमें बिल्कुल समझ नहीं आता कि हमें करना क्या है, है ना। बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आती है लाइफ में जहाँ पे हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं, बिल्कुल डिप्रेस हो जाते हैं। तो हम लोगों के कंफ्यूजन्स को दूर करने के लिए भगवान एक सीन सेट करेंगे अर्जुन के बिहाफ पर ताकि वो परफेक्ट क्वेश्चन पूछ सके हमारे लिए, हम सब कंफ्यूज ह्यूमन बींग्स के बिहाफ पर। और फिर भगवान श्री कृष्णा परफेक्ट आंसर्स देंगे क्योंकि भगवान ही परफेक्ट है। परफेक्ट आंसर किसके पास है? भगवान के पास, है ना। और भगवद गीता एक परफेक्ट क्वेश्चन और परफेक्ट आंसर बुक है। तो वो परफेक्ट क्वेश्चन को पूछने के लिए चैप्टर 1 अध्याय 1 वो भूमिका बनाएगा जहाँ युद्ध होने वाला है। ऐसी भूमिका बनाई है मतलब चैप्टर 1 में भगवान ने जहाँ पे महाभारत का महान युद्ध होने वाला है, दुनिया की सबसे बड़ी वॉर होने वाली है रिलेटिव्स के बीच में, है ना। तो सबसे पहले फ्रेंड्स इस अध्याय में हमें ये समझाया गया है कि जो जो दुर्योधन टाइप के लोग होते हैं, जो कौरव वृत्ति के लोग होते हैं, मतलब कि जो अहंकारी लोग, जो नास्तिक लोग होते हैं, जो ईश्वर को नहीं मानते, उनकी सोच को बताया गया है। कैसे वो घमंड में रहते हैं और कैसे वो हमेशा भगवान की प्रेजेंस को इग्नोर कर देते हैं। तो घमंड में एक इंसान कैसे बात करता है वो बताया जा रहा है इस श्लोक में। द्रोण ने कहा, वो बात कर रहा है भीष्म पितामह जी के साथ, कि पांडवों की तरफ तो भीम ही स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है और बाकी सेना तो बहुत छोटी सी है, है ना। क्योंकि कौरवों की सेना पांडवों की सेना से बहुत बड़ी सेना थी फ्रेंड्स, और पांडवों की सेना बहुत छोटी सी सेना थी। तो वही वो बता रहा है कि पांडवों की तरफ से तो भीम ही सबसे स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, बाकी सेना तो बहुत छोटी सी है। तो उसने क्या किया, उसने पांडवों की तरफ भगवान की प्रेजेंस को इग्नोर कर दिया, उसने भगवान श्री कृष्ण की प्रेजेंस को इग्नोर कर दिया, है ना। वैसे ही देखो हमारी भी दुनियादारी की जो सोच होती है उस अहंकार में हम भी यही सोचते हैं कि मुझे तो बहुत लोग जानते हैं, मेरी तो बड़े बड़े लोगों से जान पहचान है, मुझे मिनिस्टर भी जानते हैं, मेरे पास बहुत बड़ा बैंक बैलेंस है। तो वो इस पूरी प्रोसेस में ये भूल जाता है एक व्यक्ति कि हम पूरे सिस्टम का, इस पूरे ब्रह्मांड का एक कण के कण का एक छोटा सा कण भी नहीं है, छोटा सा भी पार्टिकल नहीं है हम लोग रियलिटी में। और दुर्योधन भी भीम का नाम इसलिए ले रहा है क्योंकि वो देखने में बहुत स्ट्रॉन्ग था, हेल्दी था, है ना, तो वो उसी को स्ट्रॉन्ग मानता है ना। तो दुनियादारी में भी फ्रेंड्स, जिनके पास बहुत बड़ी गाड़ी हो, जिसको बहुत ज्यादा लोग जानते हो, उनसे वो अलग तरह से बिहेव करते हैं, और जो सिंपल सा व्यक्ति हो, लेकिन एक्चुअली हो सकता है कि वो बहुत महान व्यक्ति हो, है ना, हो सकता है वो किसी कंपनी का सीईओ भी हो सकता है ना, लेकिन अगर कोई बाहरी चमक दमक ही देखता है तो एक आम व्यक्ति को भी ना दूसरे लोग कुछ नहीं समझते। तो दुर्योधन फ्रेंड्स उस सोच को रिप्रेजेंट करता है कि हमारी शक्ति का तो कोई हिसाब नहीं है, लेकिन पांडव लोग कुछ नहीं है हमारे सामने। फ्रेंड्स एक्चुअली दुनियादारी के अहंकारी लोग, नास्तिकवादी लोग हमेशा सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में रहते हैं कि हम ही बेस्ट हैं और दूसरे हमसे नीचे हैं। लेकिन फ्रेंड्स ये सोचना कि आज हम जो हैं कल हम उससे बेटर बन जाएंगे, उत्तम बनने का प्रयास करना अच्छी बात है फ्रेंड्स, लेकिन ये सोचना कि मैं ही बेस्ट हूँ, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ और बाकी सब मुझसे नीचे हैं, ये अहंकारी सोच को बताता है। मैं कल जो भी थी आज मुझे उससे बेस्ट करना है, मुझे अपने आप को उससे इम्प्रूव करना है, मुझे ये सोचना है, ना कि क्या नहीं सोचना है जो दुर्योधन सोच रहा है कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं ही बेस्ट हूँ, है ना। और परमात्मा भी हमसे यही चाहते हैं कि हम जो कल थे हम उससे बेटर होते जाएं, हम जो आज हैं हम उससे बेटर बनते जाएं। इसमें कुछ गलत बात नहीं है, अपने आप को लगातार इम्प्रूव करते जाना। तो दुर्योधन भी उसी सोच को रिप्रेजेंट करता है फ्रेंड्स कि मैं बेस्ट हूँ और कोई भी मेरे आगे कुछ नहीं है। और जब युद्ध से पहले भीष्म तथा दुर्योधन पक्ष के वीरों ने अपने अपने शंख बजाए, मतलब कौरवों और पांडवों ने जब अपने अपने शंख बजाए, तो ये कहीं नहीं बताया गया कि पांडवों को डर लगा, कहीं नहीं ये बताया गया श्लोकों में। लेकिन जब पांडव पक्ष के शंख बजे, शंखनाद हुआ, तो धृतराष्ट्र के पुत्रों का हृदय विदीर्ण हो गया, वो डर गए, ये बताया गया। इसका कारण क्या फ्रेंड्स? इसका कारण है कि स्वयं पांडव और भगवान श्री कृष्ण में उनका विश्वास था कौरवों का। तो ये कहीं नहीं बताया गया कि जब पांडव पक्ष के शंख बजे तो कौरव पक्ष के लोग डर गए, लेकिन उल्टा हुआ कि जब पांडव पक्ष के शंख नाद हुआ तो कौरव पक्षों का हृदय, धृतराष्ट्र के पुत्रों का हृदय विदीर्ण हो गया, वो डर गए, है ना। तो इससे क्या हमें शिक्षा मिलती है? इससे फ्रेंड्स हमें ये शिक्षा मिलती है, ये लर्निंग्स मिलती है कि परमेश्वर की शरण ग्रहण करने वाले को कोई भय नहीं रह जाता, चाहे हम कितने भी मुश्किल में क्यों ना हो, कितने भी संघर्षों का सामना क्यों ना कर रहे हो, लेकिन अगर हम भगवान की शरणागति ग्रहण कर लेते हैं, है ना, तो हमें कोई भय नहीं रह जाता। फिर क्या लगता है कि है ना, हमारी परवाह करने वाले, हमें देखने वाले, मुझे किस बात की चिंता है? चिंता है तो उनको चिंता है ना। जब हम शरणागति ग्रहण कर लेते हैं ना फ्रेंड्स, फिर जो हम अपनी चिंता है ना वो परमात्मा के चरणों में डाल देते हैं, फिर वो हमारी चिंता करने लग जाते हैं। सिंपल ये थ्योरी है। पहले जब हम चिंता करते रहते हैं तो हम और ज्यादा नेगेटिविटी को इन्वाइट कर रहे होते हैं, और हम सोच सोच के ओवर थिंकिंग कर करके हम और ज्यादा डिप्रेस होते रहते हैं। लेकिन जैसे ही हम परमात्मा की शरण ग्रहण करते हैं, तो सारी चिंता, सारे भय हमारे मन से जाने लगते हैं। तो हमने इस चैप्टर से ये लर्निंग्स ली कि जब हम ईश्वर से जुड़ते हैं, जब आप ईश्वर से जुड़ते हो तो निर्भयता आ जाती है। पास्ट और फ्यूचर के डर से हम ऊपर उठ जाते हैं, क्या होने वाला है, कल को क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, है ना, मेरी फैमिली का क्या होगा, मेरा क्या होगा, इस सारे डरों से, इन सारे चिंताओं से हम मुक्त होने लगते हैं। पास्ट में क्या हुआ, मतलब कोई भी अगर हमने गलतियां की हैं, गलतियां तो हम करते रहते हैं ना, गलतियों के पुतले हैं हम लोग, तो कई बार हम ज्यादा ही स्ट्रेस में आ जाते हैं कि काश मैंने ये गलती ना की होती तो मेरी लाइफ ज्यादा बेटर होती। तो ये सब चिंताओं से हम मुक्त होने लगते हैं कि आज मैं बेटर कर सकती हूँ ना, उसको तो मैं पास्ट में नहीं जा सकती हूँ ना, मैं फ्यूचर में मुझे पता लग सकता है कि मेरा क्या होने वाला है, लेकिन मेरे हाथ में क्या है, मेरे हाथ में है आज, जिसको मैं बेटर कर सकती हूँ, है ना। तो हमें आज में रहना आ जाता है फ्रेंड, मैंने ये ऑब्जर्व किया। तो पांडवों की सेना बेशक छोटी थी, वैसे ही हमारे पास भी अगर कंफर्टेबल लाइफ ज्यादा नहीं है, हमारे पास भी मान लो ज्यादा प्रॉपर्टीज नहीं है, ज्यादा गाड़ियां नहीं है, बैंक बैलेंस कम है, लेकिन अगर आपके पास, मेरे पास, हमारे पास भगवान का कनेक्शन है, तो आपको भी जीवन में डर लगने बंद हो जाता है, फिर हम सबको भय लगना बंद हो जाता है, निर्भयता आ जाती है जीवन में, है ना। और जो गलत कर रहे होते हैं फ्रेंड्स, वो बाहर से जितना भी ड्रामा कर ले कि वो बड़े स्ट्रोंग है, लेकिन अंदर से वो डरे रहते हैं। जैसे कौरव पक्ष के लोग अंदर से डरे हुए हैं, बाहर से तो स्ट्रोंग होने का दिखावा कर रहे हैं, लेकिन अंदर से बहुत डरे हुए हैं, है ना, क्योंकि परमात्मा तो उनके अंदर भी है ना, जो गलत कर रहा है ना, तो भगवान उनके अंदर, परमात्मा उनके अंदर एक भय जनरेट कर देते हैं, क्योंकि वो भी प्रभु के ही बच्चे हैं, है ना, तो प्रभु उसको भी सही रास्ते पे लाने की जिम्मेदारी भी तो प्रभु की है ना, है ना। तो प्रभु उसको बता रहे होते हैं कि भाई तुम गलत ट्रैक पे हो, वो अलग बात है। मैक्सिमम ऐसे व्यक्ति ज्यादा सुनते नहीं है ना, और सुन लें अपने अंदर की बात, अंतरात्मा की आवाज, तो उनकी फिर जिंदगी बदल जाती है ना। तो भय बढ़ने का मतलब, अंदर से चिंता बढ़ने का मतलब कि हम लोगों का कनेक्शन नहीं अभी प्रभु से, और प्रभु हमें बता रहे हैं कि हम उनकी डायरेक्शन के विपरीत जा रहे हैं, उनके इंस्ट्रक्शंस के विपरीत जा रहे हैं हम लोग, है ना। तो अगर हमें डर लग रहा है, चिंता रहती है ना जीवन में, तो इसका मतलब ये है कि हमें कुछ लाइफ में चेंजेस करने की जरूरत, हमारा लाइफ का ट्रैक कुछ ठीक नहीं चल रहा है, तो हमें उनमें चेंजेस करने की जरूरत है। प्रभु का कनेक्शन हमारी लाइफ में वीक है, अपनी लाइफ में जो हम डिसीजन ले रहे हैं या जो लाइफ जी रहे हैं वो गलत जी रहे हैं, तो उसको ठीक करने की जरूरत है। अगर हमें हमारे अंदर भय है, हमारे अंदर डर है, तो हमें ऑब्जर्व करना है कि कहाँ पे हम गलती कर रहे हैं। एक और पॉइंट हमें समझना है फ्रेंड्स इस अध्याय में, कि प्रभु अर्जुन को समस्या में डाल रहे हैं, मोह में डाल रहे हैं, है ना। क्योंकि अब भगवत गीता का प्राकट्य होना है ना, भगवत गीता भगवान ने सुनानी है, तो एक सीन सेट कर रहे हैं ना भगवान, अर्जुन को कंफ्यूज कर रहे हैं, अर्जुन को डिप्रेस कर रहे हैं, है ना। एक सिचुएशन आ गई अर्जुन के आगे जिसमें वो डिप्रेस हो जाता है, तो भगवान अर्जुन को भ्रमित कर रहे हैं, क्योंकि अर्जुन को प्रभु माध्यम बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि भगवान ने भगवत गीता सुनानी है अर्जुन के माध्यम से, हम सबको सुनानी है, है ना। तो अर्जुन को क्या लगता है कि दोनों ही तरफ से मेरा नुकसान है, अगर वो जीत गए तब भी, और अगर वो हार गए तब भी मेरा नुकसान है, क्योंकि दोनों ही केसेस में मेरे अपने ही तो हैं जिनसे उनको युद्ध लड़ना है, जो उनके दुश्मन हैं, जो उनके रिलेटिव्स हैं, वो उनके अपने ही तो हैं जिनके साथ अर्जुन का विशेष लगाव है। लेकिन फ्रेंड्स हम भूल जाते हैं कि हमारे जीवन का लक्ष्य प्रभु की प्रसन्नता और समाज कल्याण है। किसी एक दो रिश्तेदारों को खुश करना नहीं है हमारे जीवन का लक्ष्य, है ना। और वो एक दो रिश्तेदार कई बार गलत भी कर रहे होते हैं, तब भी हम आवाज उठा नहीं पाते, है ना। तो अब अर्जुन भी ये अपने बारे में सोच रहा है, मतलब ये नहीं सोच रहा है वो भी कि मैं प्रभु से गाइडेंस लूं, है ना। तो चैप्टर वन में हर बंदा जो दुनियादारी में फंसा हुआ है उसकी मानसिकता को दर्शाता है चैप्टर वन, है ना, कि कैसे हर इंसान ये सोचता है कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी लाइफ कंफर्टेबल हो जाए, है ना। लेकिन उस समय हम ये भूल जाते हैं फ्रेंड्स कि हम एक आत्मा हैं और हमारा काम है सही कार्य करना, सिंपल बात है, ऐसे कार्य करना जिससे प्रभु को प्रसन्नता मिले। देखो एक और लर्निंग हम इस अध्याय से ले सकते हैं, वो है मन का चंचल नेचर। पांडवों को, अर्जुन को बहुत पहले से पता था ना युद्ध का, बहुत सालों से उनकी तैयारी चल रही थी, युद्ध तो होगा ही, उनको पता था इस बात का, तो कितने उत्साह में थे वो जब उनको पता था कि युद्ध तो होना ही है, बहुत सालों से इस चीज की तैयारी कर रहे थे वो। लेकिन ये एक दो मिनट में ही क्या हो गया कि मन भ्रमित हो गया। अब मन कह रहा है उसी स्ट्रॉन्ग अर्जुन को कि इससे तो अच्छा है कि मैं निहत्ता ही रहूं और कौरव मुझे मार दे, है ना। अपने सारे शस्त्र वो त्याग देते हैं, जमीन पर रख देते हैं और कहते हैं कि मुझे कोई इच्छा ही नहीं है ऐसे राज्य की, ऐसे सुखों की, ऐसे विजय की मुझे कोई इच्छा नहीं है, इससे तो अच्छा है कि ये कौरव मुझे मार दें। इतने डिप्रेस हो जाते हैं अर्जुन कि अपने आप को मारने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, मतलब मरने के लिए तैयार हो जाते हैं, है ना। तो इसमें हम ये लर्निंग ले सकते हैं कि फ्रेंड जब हम मोह में पड़ जाते हैं, जब एक व्यक्ति मोह में पड़ जाता है तो हम अपने स्किल्स है ना जो वो लूज कर देते हैं, है ना। जैसे डॉक्टर बहुत अच्छा है लेकिन अगर उसे अपने ही बच्चे की सर्जरी करनी पड़ जाए तो उसके हाथ कांपने लग जाते हैं। मतलब अगर हमारे ऊपर इमोशंस हमारे हावी हो जाएं तो हम अपने स्किल्स लूज करने लग जाते हैं फ्रेंड्स। हमारा मन एक्चुअली बहुत चंचल होता है, आज हो सकता है कि हमारा मन कुछ बताए कि ये कर लो, है ना। लेकिन जब हम वो करने लग जाते हैं, मान लो वो बोलता है कि कोई काम है, मतलब ए काम है वो कर लो, लेकिन जब हम वो काम पूरा करने वाले होते हैं तो मन कहता है नहीं छोड़ो जेड कर लो, है ना। इसी को डबल माइंडेड कहते हैं और इस बात को हमने एक्सपीरियंस किया हुआ है कि हमारे मन की जब होने भी लगती है तो हमें लगता है कि यार छोड़ो ये, मतलब इसमें वो मजा नहीं आ रहा है, दूसरी बात होती है तो शायद ज्यादा मजा आता मुझे, है ना। तो ज्यादातर लोग इसी अप्रोच में रहते हैं फ्रेंड्स, कंफ्यूज ही रहते हैं कि क्या सही है क्या गलत है ये पता नहीं होता। मतलब चैप्टर वन इस मानसिकता को दर्शाता है कि अभी भगवान का नाम कोसों दूर है, भगवान के पास बस हम एक लिस्ट लेकर जाते हैं कि भगवान मेरी ये चीज पूरी कर दो, मेरी वो चीज पूरी कर दो, या फिर जब वो चीजें पूरी नहीं होती है तो हम कोसते हैं उनको। मतलब भगवान को हमने सिर्फ अपनी इच्छा पूरी करने के लिए सोचते हैं उनके बारे में, या ब्लेमिंग में रहते हैं जो चीज पूरी नहीं हुई होती, या जो लाइफ में डिफिकल्टीज आती हैं तो उनका जिम्मेदार हम भगवान को ठहराते हैं। भ्रमित रहते हैं हम लोग। देखो जब श्लोक नंबर 21 में अर्जुन ने कहा कि हे अच्युत मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य ले चलो, है ना, तो ध्यान से सुनो देखो उनकी ये बात। जब ये बात कही ना अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को, यहाँ से उनका मन बदलने शुरू होता है। तो एक तो देखो यहाँ पे हम इस बात को समझ सकते हैं कि एक तो अर्जुन को ज्ञान चाहिए था भगवान श्री कृष्ण से, है ना, गाइडेंस चाहिए थी भगवान से, और दूसरा हम देख सकते हैं कि अर्जुन राज्य से, विजय से और धन से, इनसे ऊपर का स्थान दे रहा है मतलब कौरवों को, है ना। अर्जुन के पास तो वैलिड पॉइंट है ना कि वो युद्ध कर सकता था क्योंकि सारा राज्य कौरवों ने छल पूर्वक ले लिया था, है ना, उसके पास तो वैलिड रीजन था युद्ध लड़ने का। भगवान तो संधि प्रस्ताव लेकर भी गए थे कौरवों के पास कि आप सिर्फ 5 गांव भी दे दोगे अगर पांडवों को तो भी मैं ये युद्ध नहीं होने दूंगा। लेकिन दुर्योधन ने क्या कहा कि मैं एक सुई की नोक जैसी तिनका भी नहीं दूंगा पांडवों को, है ना। और यहाँ पे देखो अर्जुन क्या कह रहा है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, है ना, वो क्या कहता है कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य ले चलो, मतलब वो देखना चाहता है उनको कि किनके खिलाफ वो युद्ध लड़ रहा है। वो ये नहीं देख रहा है जैसे कि दुर्योधन देख रहा है कि मेरी सेना बहुत बड़ी है और पांडवों की सेना बहुत छोटी है, उसकी ये सोच नहीं है कि इसकी सेना बड़ी है इसकी सेना छोटी है, है ना। अर्जुन अपनी तरफ से योद्धा नहीं गिन रहे हैं ना उनकी तरफ के योद्धा गिन रहे हैं। अर्जुन को कोई मतलब नहीं है इन सब से, मतलब एक तरह का वैराग्य आप सोच सकते हो, डिटैचमेंट, जीवन से डिटैचमेंट, लोगों के प्रति मोह, है ना। तो अर्जुन कह रहे हैं कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य स्थापित करो। और ये बात भी मैंने आपको समझाई थी श्लोकों के जरिए कि हम लोग ऐसे नहीं होते फ्रेंड्स, हम जिधर होते हैं हम उधर के ही रहते हैं, है ना। अगर मान लो मैं पांडवों की साइड होंगी तो मैं हमेशा पांडवों की साइड ही रहूंगी, अगर मैं पांडवों की तरफ हूँ तो मुझे कौरवों की तरफ जाकर क्यों देखना है ना। अगर मैं कौरवों के विरोध में हूँ तो मैं एक डिस्टेंस बनाकर रखूंगी ना उनसे, मुझे क्यों देखना है उनको, है ना। तो मध्य में जाने का मतलब समझो, हमें क्या लगता है कि जहां पे मैं हूँ जिस साइड में हूँ बस वही बात सही है, मैं सही हूँ मेरे तरफ के लोग सही है और दूसरी तरफ सब लोग गलत है। क्योंकि हमने ना फ्रेंड्स दूसरों के लिए ना मतलब अपने जो सो कॉल्ड हमने अपने शत्रु बनाए होते हैं ना उनके बारे में हमने कल्पनाएं की होती है ना, हमारे मन ने बहुत सारी कल्पनाएं की कर ली होती है ना। तो जब हम उनके पास जाएंगे उनसे बात करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि कहीं मैं गलत ना हूँ, जिनके बारे में मैंने कल्पनाएं बनाई हुई हैं शायद वो गलत ना हो, है ना। तो कौन ये टेंशन ले, हम ये सोचते कौन ये टेंशन ले, बस वो दुश्मन है तो दुश्मन ही रखो ना उनको, क्यों मुझे उनको दोस्त बनाना है, क्यों मुझे उनको मित्र बनाना है ना। तो अर्जुन जैसे लोग फ्रेंड्स बहुत कम होते हैं जो कहते हैं कि मैं बीच में जाकर देखूंगा अपने दुश्मन को जो देखना चाहते हैं। तो एक सीन क्रिएट करना है ना भगवान श्री कृष्ण को, उनके अंदर मोह पैदा कर रहे हैं, है ना, ताकि भगवान ने भी तो डिसाइड करना है ना, डिसीजन लेना है कि गीता जैसा उपदेश, भगवत गीता जैसा उपदेश अर्जुन को देने के लिए, है ना। तो शोकग्रस्त अर्जुन चैप्टर में अर्जुन की ये दशा ही, अर्जुन की ये शोक अवस्था ही अर्जुन की पात्रता का प्रमाण बनी, है ना। भगवान ने उसको सुयोग्य पात्र समझा है भगवत गीता का संदेश देने के लिए, और भगवत गीता का संदेश अर्जुन के माध्यम से हम लोगों तक पहुंच रहा है, है ना। क्योंकि भगवान तो भी बहुत पारखी है, बहुत इंटेलिजेंट है और बहुत टाइम से वो अर्जुन को जानते हैं, अभी तो से थोड़ी जान रहे हैं, बहुत सालों से अर्जुन को जानते हैं, है ना, शुरू से उनकी छोटी छोटी बात वो ऑब्जर्व करते हैं, कौरवों को भी जानते हैं और अर्जुन को भी जानते हैं, है ना। तो अर्जुन को खाली जीतना ही नहीं है, लड़ना ही नहीं है, अर्जुन को जानना है कि मैं किसके अगेंस्ट युद्ध लड़ रहा हूँ, मेरे को देखना है उनको, जाने बिना वो किसी को दुश्मन नहीं बना पा रहे हैं, चाहे सामने शत्रु पक्ष की सेना ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी वो जानना चाहते हैं, अपने शत्रु को भी वो जानना चाहते हैं। और हम लोग अपनों को ही दुश्मन बना लेते हैं, दुश्मनों को तो छोड़ो अपनों को ही दुश्मन बना लेते हैं, अपने आसपास के बिल्कुल क्लोज रिलेशनशिप को हम दुश्मन बना लेते हैं, पशुओं की तरह व्यवहार होता है ना हमारा, जैसे उनके लिए कोई रिलेशंस नहीं है वैसे हम लोग भी का जीवन भी कुछ कुछ ऐसा ही होता है ना। तो अर्जुन कह रहे हैं कि मुझे जानना है, मुझे समझना है ना, तो ऑब्जर्व करना है अपना नेचर अर्जुन के साथ, अर्जुन के साथ ही ऐसा क्यों हुआ, कुछ तो होगा ना अर्जुन में ऐसा कुछ दिव्य क्वालिटीज होंगी ना उसमें, ऐसी उदारता, ऐसी करुणा, ऐसी सत्यता, और ये क्वालिटीज आई कैसे उसमें, ये ऑब्जर्व करो, है ना। तो एक महत्वपूर्ण बात हमें, एक महत्वपूर्ण लर्निंग हमने यहाँ से सीखनी है फ्रेंड्स, कि ये सब अर्जुन की संगत का असर था, भगवान श्री कृष्ण से डायरेक्ट लिंक था उसका, भगवान श्री कृष्ण उसके बेस्ट फ्रेंड थे, है ना, इसलिए कहते हैं कि संगति का बहुत असर होता है फ्रेंड्स। तो फिर 25th श्लोक में क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण ने रथ भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जी के आगे खड़ा कर दिया, उन्होंने इंटेंशनली सोच समझ कर अपना रथ उनके आगे खड़ा किया, क्योंकि उनको पता था कि अर्जुन अब कंफ्यूज होगा, मोह में आएगा, है ना, तभी उसको श्रीमद् भगवत गीता कही जाएगी। इसलिए उन्होंने, भगवान श्री कृष्ण ने अपना रथ भीष्म और द्रोणाचार्य जी के आगे खड़ा कर दिया, है ना। तो वर्ल्डली लाइफ में हम भी देखें तो हम भी मोह के आगे, अटैचमेंट्स के आगे वीक हो जाते हैं, रिलेशनशिप्स के आगे वीक हो जाते हैं, सही को सही और गलत को गलत नहीं कह पाते हम लोग, है ना। हमारे जो दो चार रिश्तेदार है जो गलत भी कर रहे होते हैं तब भी हम सही नहीं कर पाते चीजों को, क्योंकि हम विवश होते हैं मोह के आगे, कमजोर हो जाते हैं, है ना। जैसे कि अर्जुन मोह में आ गए हैं, भीष्म पितामह जी उनके दादाजी थे और द्रोणाचार्य जी उनके गुरु थे, शस्त्र विद्या सीखी थी उनसे, है ना। तो भगवान श्री कृष्ण तो इंटेलिजेंट है, इसलिए उन्होंने रथ उन दोनों के आगे खड़ा किया, है ना। क्योंकि किसी और के सामने अगर खड़ा करते, मान लो दुर्योधन के आगे खड़ा कर देते, कर्ण के आगे खड़ा कर देते, किसी के भी आगे खड़ा कर देते, अश्वत्थामा के आगे खड़ा कर देते, तब कंफ्यूज नहीं होना था अर्जुन ने, है ना। क्योंकि अर्जुन के हृदय में इन दोनों के प्रति गहरा प्रेम है और इन दोनों के हृदय में भी अर्जुन को लेकर प्रेम है, इसलिए भगवान ने रथ भीष्म पितामह जी और द्रोणाचार्य जी के आगे खड़ा कर दिया, है ना। क्योंकि भगवान को पता भी ये कंफ्यूज होगा, है ना, क्योंकि भगवान तो जानते हैं कि इमोशंस के आगे व्यक्ति लाचार हो जाता है। एक दो मिनट पहले देखो वो बिल्कुल तैयार था युद्ध के लिए, लेकिन अब उसका स्टेट ऑफ माइंड ऐसा हो गया है कि उसको लगता है कि मैंने युद्ध नहीं लड़ना, मैं तो बिल्कुल युद्ध नहीं लड़ सकता। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है किसी की, तो भगवान को पता है कि तभी भगवत गीता कही जाएगी ना, जब अर्जुन ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में हो जाएंगे, है ना, ऐसे मोह में आ जाएंगे, तभी भगवत गीता कही जाएगी। हमें भी इन चीजों का ध्यान रखना है, कहीं हम भी इनके चक्कर में कमजोर ना पड़ जाएं और कमजोर पड़कर अपना फोकस ना खोज पाएं अपने स्पिरिचुअल लाइफ से, अपनी भक्ति से, है ना। क्योंकि फ्रेंड्स ये समझ लो अच्छे से कि संसार अभी भी रस्साकशी में ही चल रहा है, और भगवत गीता नहीं आती अगर सामने दुर्योधन की सेना खड़ी नहीं होती। दुर्योधन हमेशा रहेंगे, ये नहीं है कि महाभारत खत्म हो गई है तो दुर्योधन खत्म हो गए हैं या अर्जुन खत्म हो गए हैं, हमेशा दो पक्ष हमेशा रहेंगे फ्रेंड्स, दो साइड्स हमेशा रहेंगी, जिसमें एक साइड पांडवों की तरफ रहेगी और एक साइड कौरवों की तरफ रहेगी। तो ये डिसाइड हमने करना है कि हमने किस साइड चलना है। अभी देखो अर्जुन कंफ्यूज हो रहा है, लेकिन नेक्स्ट चैप्टर में आते आते जैसे भगवान की गाइडेंस उसको मिलती जाएगी तो वो डिसाइड कर लेता है कि मुझे किस साइड जाना है ना। तो इस द्वंद्व में, इस रस्साकशी की गेम में, अपने जीवन में हमें डिसाइड करना है, हमें डिसीजन लेना है कि हम लोग कौरवों की तरफ खड़े होना है हमें कि पांडवों की तरफ खड़े होना है हमें, भगवान श्री कृष्ण की तरफ खड़े होना है हमें कि हमें कौरवों की तरफ खड़े होना है ना। भगवान तो हमेशा ही हमें अपनी तरफ बुलाते हैं। श्री कृष्ण भगवान का मतलब ही है आकर्षण, कृष्ण मतलब ही है आकर्षण, वो तो खींच रहे हमें अपनी तरफ। ये डिसाइड हमने करना है फ्रेंड्स कि हमें उनकी बात सुननी है या नहीं सुननी है। भगवान खड़े हैं, है ना, अर्जुन तो आ जाएंगे उनकी तरफ। उस टाइम भी भगवान के अगेंस्ट ही रहे ना कौरव वगैरह सभी लोग, इस कलयुग में भी कई लोग भगवान को नहीं मानते हैं, हमेशा अगेंस्ट ही रहते हैं, निंदा में पड़े रहते हैं, भगवान के बारे में भी निंदा और भगवान से जुड़े लोगों के बारे में भी निंदा, है ना। फिर भगवत गीता में फ्रेंड्स हम एक और लर्निंग सीखेंगे कि जो दया का भाव है हम लोग वो रॉन्गली अप्लाई करते हैं, है ना। जैसे अर्जुन अब सेंटिमेंटल हो रहा है, इमोशनल हो रहा है, उसको दया आ रही है कौरवों के साथ। अब जब भगवान उसको कंफ्यूज करेंगे, फिर उसको समझाएंगे सेकंड चैप्टर से, तो भगवान उसको समझाएंगे कि दया का बेस्ट एप्लीकेशन क्या है, कहाँ पे हम अपना दया हमें लगानी चाहिए। ये तो है कि अर्जुन निस्वार्थ हो गए, लेकिन भगवान अब आगे समझाएं कि निस्वार्थ तो होना है, स्वार्थ और निस्वार्थ से परे होना क्या है, वो फिर अब भगवान सिखाएंगे हमें सेकंड चैप्टर से और अर्जुन के माध्यम से हमें सिखाएंगे, है ना। ऐसा नहीं होता कि जब हम निस्वार्थ और स्वार्थ से ऊपर हो जाते हैं तो हम बिल्कुल ही चुपचाप बैठ जाएंगे, कोई गुस्सा नहीं करेंगे, कोई बात नहीं करेंगे, है ना, जो भी कोई हमें बोलता जाता है हम उसकी सुनते जाएंगे, है ना। तो भगवान एक्चुअली निस्वार्थ और स्वार्थ से परे होकर कैसे युद्ध किया जाता है वो हमें सिखाते हैं, सही चीजों के लिए युद्ध करना क्या होता है वो भगवान अर्जुन को सिखाते हैं, अर्जुन के माध्यम से हमें सिखाते हैं, है ना। ऐसा नहीं होता कि जिसका स्वार्थ खत्म हो जाता है, जो निस्वार्थी हो जाते हैं तो वो लोग वीक हो जाते हैं। एक्चुअली मैंने देखा कि जब हम स्वार्थ और निस्वार्थ के परे हो जाते हैं ना, तो एक्चुअली युद्ध तो तब शुरू होता है, तब होता है सही चीजों के लिए युद्ध होना, सही चीजें करना क्या होते हैं, तब भगवान से हम ये सीखते हैं, है ना। तो वो युद्ध भगवान श्री कृष्ण सिखाते हैं अर्जुन को और अर्जुन के माध्यम से हमें सिखाते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण लर्निंग्स देंगे अर्जुन को अर्जुन के माध्यम से हमें, है ना, तो हमें समझ आती है फिर कि स्वार्थ और निस्वार्थ से परे होना क्या होता है, है ना। जब देखो स्वार्थ होता है तो हम छोटी छोटी लड़ाइयों में पड़े रहते हैं, छोटी छोटी बातों में उलझे रहेंगे, जब हमें स्वार्थ होगा उसने मुझे ये कह दिया तो मुझे भी उसको ये जवाब देना है, ये तो हो गए स्वार्थ वाले युद्ध, है ना। और निस्वार्थ जब हो जाते हैं तो महाभारत का युद्ध होता है ना। जब निस्वार्थ हो गए थे अर्जुन तब महाभारत का युद्ध हुआ था, है ना। जब वो कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे ना राज्य चाहिए, ना मुझे विजय चाहिए, ना मुझे धन चाहिए, निस्वार्थ हो गए थे ना अर्जुन, तब महाभारत का युद्ध होता है। चूज करते हैं वो महाभारत का युद्ध करना फिर, है ना। तो हमने एक मेन इम्पॉर्टेंट बात हमने ये भी समझी थी कि जब तक हमारे जीवन में छोटे छोटे लड़ाई झगड़े हैं ना, छोटे छोटे मुद्दे हैं, उसने मुझे ये कह दिया, उसने मुझे वो कह दिया, छोटे छोटे लड़ाइयाँ अगर हमारे जीवन में रहेंगी ना तो भगवत गीता का कोई मतलब नहीं है ऐसे लोगों के जीवन में। कि हम लोगों ने यही सोचते रहना है, उसने मुझे आज इसने ये कह दिया, आज उसने मुझे वो कह दिया। अगर हम इन्हीं बातों में उलझ रहे तो भगवत गीता मिल भी गई तो हम समझ भी आ गई तो हम करेंगे क्या भगवत गीता का। मेन इंपॉर्टेंट चीज है क्या, भगवत गीता के स्टूडेंट हैं हमें तो हमें छोटी छोटी बातों में नहीं उलझना है। कोई हमें क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है इन बातों से हमें परे उठना है ना। तो अर्जुन दया का भाव रोंगली अप्लाई कर रहे हैं, तो जब भगवान समझाएंगे तो वो सिखाएंगे कि दया का भाव कहाँ लगाया जाता है, निस्वार्थ होना क्या होता है, ये सब सिखाएंगे भगवान श्री कृष्ण, है ना। देखो कौरवों ने कितने 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 गलत काम किए थे, है ना। अपनी भाभी के साथ चीरहरण जैसी बात थी, दुर्योधन का भीम को जहर देना, लाक्षागृह में पांडवों को जलाने का प्रयत्न करना, युधिष्ठिर के साथ छल पूर्वक जुआ खेलना, उनका राज्य ले लेना, और भी बहुत सारे कार्य कौरवों ने पांडवों के साथ किए। बहुत सारे गलत कार्य वो अपने ही भाई के बच्चों के साथ वो लोग कर रहे थे, तो अपने राज्य के समाज के लोगों के साथ तो क्या ही करेंगे, आम लोगों के साथ, है ना। तो जब भी हम भी मोह में होते हैं फ्रेंड्स, तो हम भी अपने फ्रेंड्स के साथ या रिलेटिव्स के साथ जहाँ पे हमें जरूरत नहीं होती वहां पे भी हम दया लगाना शुरू कर देते हैं, है ना। तो दया का क्राइटेरिया हमें समझना है, दया का क्राइटेरिया अर्जुन का भी ये होना चाहिए था, उसको ये सोचना चाहिए था कि अगर वो अपनी ड्यूटी नहीं करेगा और कौरव राजा बन गए तो समाज का क्या होगा, आम जनता का क्या होगा, अपने भाई के बच्चों का नहीं वो लोग सोच रहे हैं तो आम जनता का कैसे वो कुछ सोचते, है ना। तो हमें दया दिखानी है जो सच में जिन जिनको दया की जरूरत है, जैसे जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं, गरीब लोग हैं, हम वहां पे हमें दया लगानी चाहिए। तो इस पूरे अध्याय में बताया गया है कि फ्रेंड्स की सोल की वो वाली स्टेज है जिसमें वो मंदिर भी जाता है लेकिन बताने क्या जाता है कि आपने मुझे दुख क्यों दिया, या अपनी वो लिस्ट लेकर जाया कि भगवान मुझे ये चाहिए मुझे वो चाहिए, एक पूरी लंबी लिस्ट होती है जहाँ पे उसको लिस्ट को पढ़ने में भी 5 मिनट लग जाते हैं, या फिर उनसे लड़ने जाते हैं कि जो भी दुख आया जीवन में वो आपकी वजह से ही आया, आपने मुझे दिए। ये वो स्टेज है जहाँ पे अभी हम ये कुछ नहीं चाहते कि भगवान हमसे क्या चाहते हैं। फर्स्ट चैप्टर में अभी एक व्यक्ति शरणागति से बहुत दूर है, अभी तक उसको ये सोच नहीं होती कि भगवान के साथ उसका रिलेशनशिप एक बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है फ्रेंड्स, है ना। अभी तक भगवान उसको सिर्फ रोने के लिए लगते हैं, भगवान ने जो इतनी सारी ब्लेसिंग्स हमें दी हैं उसके लिए कोई थैंक यू का भाव नहीं होता अभी तक फर्स्ट चैप्टर में, है ना। लेकिन अगर कोई मुसीबत पड़ जाए तब हम भगवान को याद करते हैं, है ना, या कोसने के लिए हम भगवान को याद करते हैं, है ना। तो चैप्टर 1 की सोच कंफ्यूज रहना है, भ्रमित रहना है ना। और चैप्टर 1 में फ्रेंड्स एक सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट ये है चैप्टर 1 में, तो हम समझ सकते हैं कि अगर एक व्यक्ति के जीवन में दुख आता है ना तब उसका अहंकार टूटता है। जब दुख आता है जिंदगी में तब हम विनम्र होते हैं फ्रेंड्स लाइफ में, ज्यादातर केसेस में, अगर वो चीजों को सही से समझे, है ना। देखो जब लाइफ में दुख आते हैं, डिफिकल्ट सिचुएशंस आती हैं, है ना, तो दो ही बातें होती हैं, या तो हम टूट जाएं बिखर जाएं, है ना, या फिर हम उनसे लर्निंग लें और फिर से उठें, भगवत गीता का दिव्य ज्ञान लेने के लिए हम अपनी क्यूरियोसिटी दिखाएं, है ना, अपनी स्क्रिप्चर्स पढ़ने के लिए हम थोड़ा सा अपना टाइम निकालें। तो लाइफ में जब दुख आते हैं तो इसमें कई बार ऐसा होता है कि एक व्यक्ति दिव्य ज्ञान लेने के लिए अपनी रुचि भी बढ़ाता है ना। और जिंदगी में हम सब ने ये ऑब्जर्व किया होता है फ्रेंड, जब सब कुछ अच्छा चलता रहे तब क्या होता है, फिर एक व्यक्ति का अहंकार बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, वो ईश्वर की शरण नहीं लेता, उसमें अहंकार बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, डेमोनिक क्वालिटीज बहुत सारी बढ़ जाती है, उसको क्या लगता है कि मैं ही बेस्ट हूँ, बाकी किसी को कुछ नहीं समझता वो। तो हर एक नेगेटिव में भी पॉजिटिव होता है फ्रेंड्स, ये हम इस चैप्टर से समझते हैं। देखो फ्रेंड्स एक बहुत बड़ी लर्निंग हम ये भी समझते हैं इसमें कि पांडवों में धर्म मुख्य तत्व था, धर्म मतलब राइटनेस, मतलब पांडवों का भाव था कि हम चाहे कुछ भी करें जैसा भी जीवन बिताएंगे लेकिन हम धर्म के अनुसार अपना जीवन बिताएंगे, एथिकली अपना जीवन परफॉर्म करेंगे, धर्म के विपरीत नहीं जाएंगे, मतलब जो भगवान ने हमें गाइडेंस दी है मुझे उसी के अकॉर्डिंग चलना है, धर्म मतलब, है ना। देखो पांडव धृतराष्ट्र को पिता के बड़े भाई होने के कारण पिता के समान ही समझते थे और उनकी हर उचित अनुचित आज्ञा का पालन भी करते थे। लेकिन धृतराष्ट्र का अपने पुत्रों तथा पांडु पुत्रों में समान भाव नहीं थे फ्रेंड्स, उनमें वो पक्षपात था। धृतराष्ट्र में पक्षपात था, अपने पुत्रों के प्रति मोह था। क्योंकि फ्रेंड्स हम कितनी भी कोशिश कर लेना, अपने भावों को हम छुपा नहीं सकते, क्योंकि जो भाव हमारे भीतर होते हैं ना वो ही हमारी वाणी से बाहर निकलते हैं। इसी द्वेषी भाव के कारण धृतराष्ट्र को अपने कुल के संहार का दुख भोगना पड़ा, है ना, और यही द्वेषी भाव महाभारत के महान युद्ध का कारण बना। तो इससे हमें ये शिक्षा मिलती है, हमें ये बहुत बड़ी लर्निंग मिलती है कि हमें मैं और मेरे के भाव से बाहर निकलना है। धृतराष्ट्र में क्या भाव था? धृतराष्ट्र के मन में द्वेषी भाव था कि दुर्योधन आदि मेरे पुत्र हैं और युधिष्ठिर आदि मेरे पुत्र नहीं है, है ना। इस भाव के कारण ही दुर्योधन ने बहुत सारे गलत कार्य किए, है ना। तो हमें मैं, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा पति, मेरा शहर, मेरा देश, ये सब द्वेषी भाव है। ये जो सब जो बातें हैं ना, ये मेरे हैं, ये पराये हैं, ये सब भाव से हमें फ्रेंड्स बाहर आना है ना। और आप यही सोचो कि इसी भाव के कारण ज्यादातर घरों में या देशों में कला क्लेश बना रहता है ना। मैं और मेरे की वजह से ही सारा कला क्लेश है और कुछ भी नहीं। आप ऑब्जर्व करो अपनी लाइफ में, ये मेरे बच्चे हैं ज्यादातर सबसे मेन कारण होता है लेडीज का। मैंने देखा है कि अपने बच्चों के लिए बहुत ज्यादा मोह है उनके अंदर, उनको लगता है मैं बिल्कुल सही हूँ, मेरे बच्चे बिल्कुल सही है, है ना। और दूसरे के बच्चे और दूसरे के बारे में कोई फीलिंग्स नहीं होती, है ना। तो अब हम भगवद गीता के स्टूडेंट्स हैं, है ना, तो हमें इन भावों से फ्रेंड्स परे होना। देखो एक एक फैमिली की जिम्मेदारी भी एक एक लेडी ने संभाली ना, तो देखो कितना अच्छा घर का वातावरण हो जाएगा। आपके घर का वातावरण, मेरे घर का वातावरण इतना अच्छा हो जाता है ना कि आसपास के लोग ऑटोमेटिकली बदलने लग जाते हैं, है ना। हम छोटा सा योगदान भी देना है कि हमें यार ये फालतू की कला क्लेश से बाहर आना है। एक अच्छा थोड़ी सी लाइफ है हमारी, छोटी सी, है ना, खाली हाथ आए या खाली हाथ चले जाना। तो इस छोटी सी लाइफ में हमें इस कला क्लेश में नहीं रहना है, जो बाकी लोग करते हैं उनसे हटके करना है ना चीजें। क्यों बाकी जो कला क्लेश में पड़े रहते हैं, मैं, मेरे बच्चे, मेरा घर, मुझे इन चीजों में नहीं पड़ना, मुझे सही का साथ देना है। अपने बच्चों को भी वहां पे डांटना है जहां पे वो गलत होते हैं, है ना, और दूसरों के लिए अपने बच्चों को नीचे नहीं गिराना है। कंपैरिजन में पढ़ के हम जो अपने बच्चों को डाउन फील करवाते हैं वो चीजें हमें नहीं करनी है, है ना। हर चीज को समझना है ना ध्यान से, डेप्थ से। सिंपल बात है, एक बात अगर आपने समझ ली ना भगवद गीता पढ़ के, ये भाई खाली हाथ आए हैं खाली हाथ ही जाना है, बस इसके बीच में हमने प्यार से एथिकली अपना जीवन जीना है, भगवान की गुड बुक्स में आना है। भगवान हमारे टीचर है, है ना, भगवद गीता का ज्ञान हमें दे रहे हैं, तो हमें भी उनका बेस्ट स्टूडेंट बन के दिखाना है, है ना। देखो धृतराष्ट्र के जो भाव थे, जब भी वो संबोधन करते थे श्लोकों में, तो इस तरह से संबोधन करते थे कि मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र युद्ध में क्या कर रहे हैं। पहला ही श्लोक धृतराष्ट्र का है जिसमें वो क्या कह रहे हैं संजय को कि युद्ध के इच्छुक मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र में देखो क्या कर रहे हैं, वो पूछ रहे हैं संजय से, है ना। तो फर्स्ट श्लोक ही हम ध्यान से समझ लेना। अगर देखो इस श्लोक में ही धृतराष्ट्र के भाव हमें समझ आ रहे हैं, अपने पुत्रों के लिए मेरे पुत्र और पांडु के पुत्रों के लिए वो पांडु के पुत्रों से संबोधन कर रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे हैं कि भी युद्ध में देखो कि सब बच्चे क्या कर रहे हैं, ऐसा कोई संबोधन नहीं किया उन्होंने। तो इसी राग द्वेष के कारण, इसी भाव के कारण धृतराष्ट्र के ये महाभारत का युद्ध हुआ। यही चीजें उन्होंने अपने बच्चों में कल्टीवेट की बचपन से ही, है ना, और बच्चों में भी यही देखो ये चीजें आई, है ना। इसलिए हमें बहुत सोच समझ के छोटी-छोटी बातें समझो ना कि जो बातें हमारे घर में होती हैं बच्चों को उड़ेल देते हैं। क्यों हमें बच्चों को बतानी है सारी बातें? क्यों बच्चों को हम एक अच्छे से क्यों नहीं अपब्रिंगिंग करने देते? क्यों बच्चों के मन में हम लोग राग द्वेष डालते हैं? जो हमें अच्छे लगते हैं उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, जो हमें बुरे लगते हैं उनके बारे में हम गलत बातें बताते हैं, है ना। और बच्चों का जो कोमल मन है उनमें हम गंदगी डालते हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चों की अपब्रिंगिंग, जो गलत अपब्रिंगिंग होती है ना, उसमें पेरेंट्स जिम्मेदार होते हैं फ्रेंड्स। ये बात हमें बहुत लेट समझ आती है ना। और धृतराष्ट्र के इसी भाव के कारण देखो कौरव सारे मारे गए और पांडव एक भी नहीं मरे, है ना। मतलब देखो धृतराष्ट्र के इस मन के भाव से महाभारत का युद्ध हुआ, और अर्जुन के मन के भाव से जब अर्जुन कंफ्यूज हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है कि हे कृष्ण अब मुझसे नहीं होगा, मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या करना है क्या नहीं करना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, तब क्या होता है? तब श्रीमद् भगवत गीता प्रकट होती है अर्जुन के मन के भाव से। देखो अर्जुन एक बार भी नहीं कहते कि अगर मैं मर गया तो मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी फैमिली का क्या होगा, है ना। तो अर्जुन को ऐसा कोई भय नहीं है, ऐसा कोई डर नहीं है, अर्जुन को पूर्ण विश्वास था कि जीत उसकी होगी। और अगर अर्जुन डर भी रहे हैं तो अपने लिए नहीं डर रहे हैं, वो दूसरों के लिए डर रहे हैं, कमजोर हो रहे हैं, अपने लिए नहीं हो रहे हैं, दूसरों के लिए हो रहे हैं, है ना। तो महान बली है अर्जुन, बहुत शक्तिशाली है, लेकिन इतने शक्तिशाली होने पर भी जो निर्बल लोगों पर जो भाव रखते हैं, है ना, सिर्फ उनके लिए होती है भगवद गीता। जब पता है मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, लेकिन अपनी जो शक्ति का प्रयोग है, जिसका ऐसा मन नहीं होता ना कि मेरे को सिर्फ अपने स्वार्थों की पूर्ति करनी है, उसको और ज्यादा ऊंचाई पर लेकर आने के लिए होती है श्रीमद् भगवद गीता। उसके लिए आती है जीवन में, उसको और नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने के लिए भगवद गीता जीवन में आती है। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, घर घर मंदिर हर मन मंदिर, एवरीवन हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। तो फ्रेंड्स, अब रिव्यूज की तरफ चलते हैं कि आज के सत्संग से आपने क्या सीखा, या आपके कोई एक्सपीरियंसेस है तो आप शेयर कर सकते हो। फ्रेंड्स हरी बोल,
हरी हरी बोल एवरीवन, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच मोनरी, आज का सत्संग भी बहुत डिवाइन था। और अभी तो चैप्टर पहले फर्स्ट चैप्टर है, जैसे कि मैं डेली अपनी लर्निंग शेयर करती हूँ, तो सेम एज की मेरी यही लर्निंग बनी है कि जो हमारी अभी जैसे फर्स्ट चैप्टर में जैसे हमारा ये है कि हमारी जो इंद्रियां होती हैं वो जो जो वो रथ है बेकाबू घोड़े की तरह है। जब तक हम खुद को श्री हरि को सरेंडर नहीं करते तब तक हम वैसे ही हैं, हमारी इंद्रियां बेकाबू होती हैं क्योंकि मन के कंट्रोल में ही नहीं रहती, हमारे इनर कॉन्शियस के कंट्रोल में ही नहीं रहती। तो जब हम श्री हरि को खुद को सरेंडर करते हैं, उन पे पूर्ण विश्वास करते हैं बिना किसी संशय के, बिना किसी डाउट के, तो हमारी जो हमारी सोल है, जो हमारा रथ है, जो इंद्रियां हैं, उन्हें कंट्रोल करते हैं श्री हरि। फिर वो खुद ब खुद काबू में आ जाती हैं, हमारी इंद्रियां भी काबू में आ जाती हैं, लेकिन हमें खुद को सरेंडर करना पड़ेगा। सबसे हमारा जो मेन पॉइंट हमारा ये है कि अब हम स्टूडेंट हैं श्रीमद् भागवत के, तो हमें अपने खुद को, अपने मन को अब कंट्रोल करना आ जाना चाहिए। मेरी जैसे मेरा अपना जो पर्सनल है, मेरा ये है कि मेरा खुद पे अब मैं हर किसी सिचुएशन में ना थोड़ी काम रहती हूँ। अगर घर पे कुछ ऐसा सीन हो भी जाता है, मेरे बच्चे हैं जैसे तीनों हैं तो उनके साथ थोड़ा सा इश्यू हो जाता है, बट मैं काम रहती हूँ, थोड़ी टाइम के लिए होता है गुस्सा, बट उनको मैं इजिली हैंडल कर लेती हूँ। पहले ही मैं नहीं कर पाती थी क्योंकि मैंने खुद को पूर्ण रूप से, मैंने अपना सब कुछ उनको श्री हरि को सौंप दिया हुआ है, मैंने अपने घर पे उनको हेड बनाया हुआ है। मेरे दो लड्डू गोपाल, अब तो मैंने जैसे बताया था मेरे घर में बड़े लड्डू गोपाल भी आए हैं, तो मेरी अब ऑलमोस्ट सबसे पहले मेरे दिन की शुरुआत ही वहीं से होती है कि मैं उनकी सेवा, मेरा दिन का स्टार्ट ही उनकी सेवा से होता है। अगर हमें एक बैलेंस लाइफ जीनी है तो उनके दिए गए ज्ञान के अकॉर्डिंग ही जीनी है, तभी हम एक अच्छी लाइफ जी सकेंगे। हरी हरी बोल,
हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। बहुत ही ब्यूटीफुल आपने रिव्यूज दिए हैं पूजा जी, बिल्कुल ही बहुत ही अच्छी तरह से पूरा चैप्टर ही समझा दिया है कि सिंपल हमें अपने इंद्रियों पे कंट्रोल करने आ जाता है, जो कि बहुत बड़ी बात है, है ना। हमारा मतलब मन का और अपने शरीर का कंट्रोल हमारे हाथ में आना छोटी बात थोड़ी है। अपने मन के अकॉर्डिंग तो हमने पूरा जीवन बिता दिया, जो मन ने कहा वैसा जीवन जी लिया, जो खाना चाहता है मन वो हम खाते हैं, जो सोना चाहता है तो हम सो जाते हैं, टीवी देखते हैं तो घंटों घंटों टीवी देखते रहते हैं, मनगढ़ंत जीवन जीते रहते हैं, निंदा चुगली में पड़े रहते हैं, लाइफ का कोई ट्रैक नहीं है, कुछ पता नहीं है कैसे जीना है कैसे नहीं, है ना। अगर इंद्रियों में कंट्रोल आ गया तो मतलब समझ ही आ गई ना पूरी भगवद गीता कि हमें करना क्या है लाइफ में। अगर हमारा अपने इंद्रियों पे कंट्रोल आ जाता है ना, हमें समझ आ जाता है क्या हमें देखना है, क्या हमें सुनना है, क्या हमें पढ़ना है, क्या हमें खाना है, है ना। अपने पूरा कंट्रोल अपने हाथ में आ गया, हमारे लाइफ का कंट्रोल, मन का कंट्रोल आना कोई छोटी बात थोड़ी है लाइफ में। फ्रेंड्स बहुत बड़ी घटना बोल सकते हो आप, ये होती है हमारे जीवन में, तो जीवन अपने आप ही परिवर्तित हो जाता है। फिर लाइफ में मुश्किलें हैं, मुश्किलें थोड़ी हमसे चली जाती हैं, मुश्किलें तो होती हैं लाइफ में, ज्यादा आ जाती हैं कई बार, लेकिन उनको डील करने आ जाता है, है ना। और ये समझ आ जाता है कि जो भी मेरे को इंस्ट्रक्शंस है भगवद गीता में, मैं जो भी समझ रही हूँ बस उसके अकॉर्डिंग मुझे अपनी लाइफ जीनी है, है ना। उसमें चाहे दुख भी आते हैं और सुख भी आते हैं, दोनों चीजें होती हैं, लेकिन उनको डील हम अच्छे से कर पाते हैं, अपने ब्लेसिंग्स को काउंट कर पाते हैं, जो लाइफ के जो दुख है वो इतने लगते नहीं है, है ना। तो ये चीजें समझना, लाइफ में उतारना, बस यही तो भगवद गीता का संदेश है, है ना। थैंक यू सो मच पूजा जी। हाँ जी, कोई और जो अपनी लर्निंग शेयर करना चाहता है फ्रेंड्स? हाँ जी पूजा जी। हाँ जी
जी जी, हरी हरी बोल। तो मेरा ये है कि पहले भगवद गीता सुनने से पहले ना, हम जो आम जो नॉर्मल पीपल्स होते हैं, इनका ये ना एक आउट ऑफ ट्रैक होते हैं, एक मोटिव नहीं होता उनका, मतलब कि लाइफ का कोई मोटिव नहीं है, बस जिए चले जा रहे हैं, जो हो रहा है होने दो, जैसे चल रहा है, कभी कंप्लेंट्स कर लो, कभी मतलब कि बड़े ज्यादा एक्साइटेड हो, हाँ ये हो गया, वैसा हो गया, बहुत अच्छा हुआ, अच्छा है, बुरा हो गया, ऐसा कुछ। मतलब कि अब ये भागवत गीता सुनने के बाद अगर कोई अगर ध्यान से सुने और उनकी जो इंस्ट्रक्शंस है उनको इम्प्लीमेंट करे अपनी लाइफ में, तो एक ट्रैक मिल जाता है। जैसे गाड़ी एक ट्रैक पे चलती है, ट्रेन है, ट्रेन पटरी पे चले, तो उसको एक वो दिशा मिल जाती है कि हमें इसी दिशा में चलना है। पहले जैसे इंद्रियां, अच्छा ये भी लेना है, वो उसके पास ये है, उसके पास वो है, वो ये ले रहा है, वो ये कर रहा है, अच्छा मुझे वो चीज बड़ी पसंद आई, वो भी लेनी है। आफ्टर भागवत गीता ये होता है कि आपकी कंट्रोल आ जाता है कि मुझे नहीं, मुझे जो चाहिए मुझे वही लेना है, मुझे फालतू में कुछ भी नहीं करना। अच्छा जिस अगर उसके कुछ अच्छा उसकी लाइफ में हो रहा है उसके कर्म वैसे हैं, अगर मेरी लाइफ में कुछ बुरा हो रहा है तो मेरे कार्मिक अकाउंट्स कुछ वैसे होंगे। तो एक पहले होता था कि अच्छा मतलब कि बुरा हो गया, ये क्यों हो गया, ये कैसे हो गया। अब ये कि कुछ भी हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, कामली उस सिचुएशन को हैंडल करना आ जाता है, चाहे बुरा हो रहा है चाहे अच्छा हो रहा है। एक फोकस्ड पॉइंट होता है हमारा कि अगर अच्छा हो रहा है तो वो ब्लेसिंग्स हैं, अगर कुछ बुरा हो रहा है कोई बात नहीं, ये टाइम भी निकल जाएगा, इसको कामली हैंडल करो। ये है मेरी लर्निंग।
हरी हरी बोल, हरी हरी बोल, ब्यूटीफुल लर्निंग्स पूजा जी आप बता रहे हो। बिल्कुल आई थिंक जो 2-3 साल से चल रहे हैं उन सबके साथ ही हो रहा है कि पहले लाइफ आउट ऑफ ट्रैक थी, बिल्कुल पता ही नहीं है कहाँ जा रही है जिंदगी, क्या हम सोच रहे हैं, करना क्या है। अब ऐसा लगता है कि जो लोग आउट ऑफ ट्रैक है अब हम उनको ऑब्जर्व कर पाते हैं, बड़े क्लोजली हम उनको देख पा रहे होते हैं, यार इनकी लाइफ में देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना। मतलब मेरी न्यूक्लियर फैमिली है, मैं और मेरे हस्बैंड मेरे बच्चे हैं, तो मैं एक्चुअली ज्यादा मेरा कोई सोशल लाइफ भी ज्यादा नहीं है, मैं ज्यादातर घर में बच्चों को देखभाल में ही बिजी रही, पहले बच्चों को पढ़ाना है, मतलब ट्यूशंस वगैरह भेजना है, फिर खुद ही छोड़ के आना है खुद, तो इन चीजों में व्यस्त रही, पहले बड़े बेटे के साथ फिर छोटे बेटे के साथ, तो मैं मेरा ऐसा सोशल सर्कल मैंने कम ही रखा, मैंने घर में बिजी रहती थी। तो अब मैं जैसे वहां जाके आई 2 महीने, तो मैं बड़ा ऑब्जर्व किया क्लोजली, है ना, बहुत सारे रिलेटिव्स को मिली, तो अब मैं देख पाती हूँ कि मतलब लाइफ में देख रही हूँ कि कोई प्रॉब्लम नहीं है लोगों की लाइफ में, बहुत कंफर्टेबल लाइफ है ना, मतलब हमसे कहीं ज्यादा कंफर्टेबल लाइफ है लोगों की, लेकिन वो सुख नहीं है, मैंने वो देखा उनमें, मतलब पता ही नहीं है कि मुझे उस लाइफ को कैसे, चीजों को कैसे हैंडल कर, प्रॉब्लम कोई नहीं है लेकिन प्रॉब्लम कैसे ढूंढनी है, वो स्पेशली वो लोग सोचते हैं, है ना। तो मतलब जस्ट आउट ऑफ ट्रैक लाइफ है उनकी चल रही, उनको लग रहा है मेरे से दुखी कोई नहीं है, पर ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स, इतना कंफर्टेबल परमात्मा ने लाइफ दे के रखी है, सब ब्लेसिंग्स हैं। अब हम भगवद गीता के स्टूडेंट है, रोज ये बातें नित्य निरंतर हमारे अंदर चलती है, है ना। जब जैसे भगवद गीता के ये सेशन ना भी हो तब भी मैं ये बातें अंदर पढ़ती रहती हूँ, सुनती है, नहीं है कि अब 3 दिन सत्संग होगा तो इसके अलावा 4 दिन मैं मजे करती हूँ, नहीं, उसमें भी मेरे को 3-4 घंटे अपने लिए चाहिए होते हैं, है ना। तो ये आप सब अब भगवद गीता के स्टूडेंट, आपका भी यही लाइफस्टाइल होना चाहिए, कम से कम 1 घंटा मैंने अपने साथ बिताना है अकेले कमरे में, उसमें मतलब आप अच्छी चीजें पढ़ो, अच्छी चीजें सुनो, अच्छी चीजें अंदर घुसाओ, ताकि फिर वो अंदर जाएगा ही नहीं ना कचरा, जो फिर आपके मन को आदत पड़ जाएगी कि मुझे इसमें मजा लेना, उसमें बहुत ज्यादा मजा है फ्रेंड्स। जो हम जो फालतू जो दूसरी चीजें हम करते थे, मनगढ़ंत जीवन जीते थे, फालतू सोचते रहना, ओवर थिंकिंग करते रहना, जो चीजें हैं नहीं वही कल्पनाओं में सोचते रहना, अननेसेसरली टेंशन में रहते हैं, है ना, तो वो सब चीजों से हम निकलने लग जाते हैं। तो कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स हैं यार, इसी लाइफ में हमें मुक्ति मिल जाती है, और क्या होती है मुक्ति, मुझे तो समझ नहीं आता और मुक्ति का कोई कॉन्सेप्ट, कि अपने दुखों से मुक्ति मिल जाती है जो हमने मनगढ़ंत दुख बनाए होते हैं, है ना। तो थैंक यू सो मच पूजा जी, बहुत ही बढ़िया लर्निंग्स होती हैं आपकी, और बढ़िया कर रहे हो आप। हाँ जी हरी बोल।
हाँ हरी हरी बोल।
हाँ जी हाँ जी कोमल जी आप बात कर सकते हो, हरी बोल।
आज का सत्संग भी बहुत संतुष्टि देने वाला था, बहुत अच्छे से आप समझाते हो, तो समझ ना आने वाली तो कोई बात नहीं है, पर कई बार हेजिटेट कर जाते हैं कि चलो बाकी लोग भी कुछ कुछ बोले, सो दैट ये ना लगे उनको कि हम ही एक दो लोग पूजा जी हैं, ये हम लोग ही बोल पाते हैं। तो मोना दी, आज के जो सत्संग से मेरी जो लर्निंग बनती है ना, वो एक तो ये कि जब हम अपने आप को ना प्रभु की कृपा पे समर्पित कर देते हैं ना, अपने आप को प्रभु के हाथों में डाल देते हैं कि यार प्रभु आप ही नहीं ही देखना है, तो वो जो हमें जिस रास्ते पे चलाएंगे ना, वो तो डेफिनेटली ही मुक्ति की तरफ और सफलता की तरफ जाएगा। एक तो ये कि एक जो हमने अपने अंदर जो हम एक भाव रखते हैं ना कि मेरा तेरा, इसको छोड़ दें, जो है वो प्रभु ने दिया है और प्रभु का ही है, है ना, हम उसकी कृपा पात्र के कारण ही उस चीज के अधिकारी बन पाए हैं, अदरवाइज तो हमारा अपना तो कुछ भी नहीं है, ऐसे आए हैं और ऐसे ही खाली हाथ सभी को जाना है। तो जो हम पाते हैं वो प्रभु की कृपा से पाते हैं, और जो अगर जो हमने पाया है यदि हम उसको शेयर करते हैं, खुशी है या कुछ सहायता हम किसी दूसरे की कर पाते हैं, तो उससे क्या होता है, जो संतुष्टि हमें मिलती है ना, उससे हम प्रभु की कृपा के और भी अधिकारी होते हैं, और वो हमें अच्छे ही रस्तों पे ऐसे ही लोगों को वो चुनता है जो उस कृपा को दूसरों में बांटने में, समझाने में, समझने में, आगे बढ़ाने में सहायक हो। तो वही वाली जो इस चीज को मैं ऐसे भी सोचती हूँ, हम अगर इनके पॉजिटिव होते हैं ना, हम अगर भगवान के साथ जुड़ जाते हैं तो हम पॉजिटिव भी हो जाते हैं, और अगर हम भगवान के साथ नहीं जुड़ते तो हमारे जो अंदर जो कचरा है या जो नेगेटिविटी होती है ना, वो डेफिनेटली हमें आती है और हमें हमारे रास्ते को भ्रष्ट करती है, हमें दिशाहीन बना देती है। हम फिर वही तेर मेर, यार उसको ज्यादा इतना मिल गया, मेरे को इतना कम मिला। तो हम सब जो भी है ना, जितना भी कुछ मिला है ना, वो भगवान की कृपा ही है। इसलिए अभी कभी भी मैं जब मंदिर, वैसे तो बहुत कम जाने का होता है कि नहीं जा पाते हैं, पर अगर जितना भी मिलता है ना, तो मैं को तो कभी बहुत बार ऐसा ही लगता है कि भगवान ने जितना दिया ना, और जो बाकी जिंदगी मेरी बची है ना, उसमें मैं सुबह से शाम तक भी अगर भगवान का धन्यवाद करूं तो लगता है कि जितनी कृपा, जितना आशीर्वाद, जितनी संतुष्टि दी है ना मेरे को, वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। हम सभी के पास बहुत कुछ होता है, पर हम समझ ही नहीं पाते कि हमारे पास है क्या। हम ये सोचते हैं वी हैव अर्न दैट, ये नहीं कि ये कृपा है उसकी। अगर किसी बुद्धि के कारण अगर हमने उसको अर्जित किया है, तो वो भी, वो बुद्धि देने वाला भी तो प्रभु ही है ना, वो कोई और थोड़ी है। और अगर इनके हमारी सामर्थ्य है, मतलब शारीरिक क्षमता है, तो वो भी प्रभु की कृपा से ही है, नहीं तो पता नहीं चलते चलते अभी कुछ हो जाए, रास्ते में गिर जाए, टांग टूट गई, 6 महीने के लिए पड़ जाओ। तो मतलब मेरे कहने का मतलब है, छोटी छोटी अगर बातों में हम प्रभु की उपस्थिति देखते हैं ना, तो वाकई बहुत ज्यादा है। और जो कहते हैं ना कि एक बात इस चीज चैप्टर से मैं ये भी समझ पा रही हूँ कि जो हमारी इंद्रियां वो डेफिनेटली भगवान की दी हुई है, पर वो चलती कब है सही रास्ते पे, जब वो प्रभु की कृपा होती है। जब प्रभु की कृपा होती है तो जो इंद्रियां है वो अपने आप कंट्रोल आती है, आ जाती है, और जो बुद्धि है वे सही रास्ते पे हमारी इंद्रियों को चलाती रहती है, जिससे हम पॉजिटिव काम करते हुए या अध्यात्म या स्पिरिचुअल के रास्ते पे चलते हुए श्री हरि की कृपा के पात्र बन जाते हैं। हरि हरि बोल।
हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। ब्यूटीफुल लर्निंग्स एज ऑलवेज कुमुजी, ब्यूटीफुली आपने भी पूरे अपने एक्सपीरियंसेस पूरे चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर दिया। अपनी बात करूं तो भगवत गीता नहीं पढ़ी थी तो कोई पता नहीं था कि मन क्या होते हैं, बुद्धि क्या होती है, और इंद्रियां क्या होती है, कोई कॉन्सेप्ट पता ही नहीं था ये, है ना। जो लाइफ लिटरली जी रहे हैं बिल्कुल मन के अकॉर्डिंग, मन ने बोला खाना है तो खाना, मन ने बोलना शॉपिंग करना तो शॉपिंग करनी है, मन ने बोलना कि आज मैं दुखी हूं तो मैं बहुत दुखी हूं, तो ये लाइफ हमने एक्चुअली जी है। तो अब भगवत गीता पढ़ने से हुआ क्या है ना, गुस्सा भी हम सोच समझ के करते हैं अब, है ना। जो भी बात मैं बोलना चाह रही हूँ, क्या इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, तो वहां पे गुस्सा भी करना पड़ता है ना, मतलब जबरदस्ती गुस्सा करना पड़ता है। ये चीजें हमने अभी सीखी कि जहां पे जरूरी है वहां पे बात करनी है, जहां पे जरूरी नहीं है वहां पे बात नहीं करनी है। मन क्या होता है, मन के अकॉर्डिंग नहीं चलना है। मेरी अपनी भी खुद की कोई आइडेंटिटी है जो मन और शरीर से अलग है, मैं क्या हूँ मुझे वो समझना है ना। भगवत गीता में क्या कह रहे हैं भगवान, मुझे करना क्या है, और मैं चलती हूँ सारी मन के अकॉर्डिंगली, जो मन कहता है मैं वही करती हूँ, है ना। तो जब भगवत गीता पढ़ते हैं हम, भगवान की इंस्ट्रक्शन सुनते हैं, तो हमें सब कुछ क्रिस्टल क्लियर होने लग जाता है कि हमें करना क्या है, क्यों फालतू का मन गणन जीवन जी रहे हैं, अननेसेसरली बोलते रहते हैं, जिसका कोई मतलब नहीं है, है ना। शांत रह के भी बातें हो जाती हैं, शांत रहकर भी हल निकलते हैं, तो ये सब चीजें हम कहाँ से सीख रहे हैं, भगवान ही समझा रहे हैं ना। हमारी बुद्धि मतलब ज्ञान प्रकाशित हो रहा है अंदर। एक्चुअली मैंने देखा कि बहुत जरूरत है सच में बचपन से ही भगवत गीता या जो भी हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं उनको हमें नॉलेज मिलनी चाहिए, ताकि हम जो डिप्रेस हो जाते हैं, दुखी रहते हैं, तो वो काफी हद तक हमारा जीवन बेटर हो जाएगा स्टार्टिंग से ही, है ना। थैंक यू सो मच कुमार जी। तो ठीक है, फिर हम भजन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। किरण जी, आज आपकी भजन की टर्न है, आप भजन गा सकते हो। हरी हरी बोल।
हरी हरी बोल मोनदी, हरी हरी बोल एवरीवन। सत्संग तो धन्य धन्य, आनंद में सत्संग था, ऐसे लग रहा था एक चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ, पूरा ज्ञान मिल गया। और रिव्यू भी धन्य धन्य थे आज, पूजा जी ने इतना सही रिव्यू दिया कि दो रथों की तुलना करवा दी। और कुमुद जी ने भी बता दिया कि जब हम भगवान जी के शरणागत होंगे, पूर्ण सरेंडर करेंगे, तो फिर ही हमें प्रभु मिलेंगे। तो इस चैप्टर में यही था, भगवान जी को तो सब पता है, पर मोह में फंसा रहे थे अर्जुन जी को कि जब ये मोह ग्रस्त हो जाएगा, मेरे पूरे दिन सरेंडर कर देगा, मेरे को शरणागत में आ जाएगा, फिर भगवान ने गीता ज्ञान देना था। तो अर्जुन जी को भगवान ने पहले से चुन रखा था कि धर्म युद्ध करना तो प्रभु करता तो प्रभु है, पर उसके हाथों से उसको इसका श्रेय देना था। देखो जब भी भगवान जी ने इसमें यह भी बताया कि जब जब पाप बढ़ेगा तो मैं आऊंगा। अगर धृतराष्ट्र शुरू से उनमें भेदभाव नहीं करता तो ये कुछ नहीं होना था, पर धृतराष्ट्र ने कभी ऐसा नहीं किया। जैसे अभी आपने हमें समझाया कि हमेशा पांडु के पुत्र और मेरे पुत्र, यही संबोधन दिया उन्होंने। बट ये था, अगर शुरू से उसको यही था मैं राजा बनूं, फिर पांडु जी ने उनको राज्य दे दिया, फिर आगे भी उसको यही था मेरा पुत्र राजा बने, मोह बहुत ज्यादा। तो यही चीज उन बच्चों में संस्कार आए, जब शुरू से वो बच्चा था दुर्योधन, तो उसने भीम को जहर दे के खीर में कुछ मिला के तो फेंक दिया, मारने की कोशिश की, तब धृतराष्ट्र ने उसको नहीं समझाया, नहीं दंड दिया, तो वो उसका ये अंदर से बढ़ गया कि मैं जो कर रहा हूँ राइट है। संस्कार यही है बच्चों में, अगर उस टाइम वो उसको गलत को गलत कह देता, सही को सही कहते, तो बच्चों में ये नहीं होना था, उसने वहीं पे रुक जाना था। क्योंकि माँ बाप जो करते हैं बच्चे वो देखते हैं, सुनते कम है हमारी, देखते ज्यादा है। अगर मैं सत्संग में बैठी हूँ, मेरे बच्चों को पता है आवाज कम रखनी है अगर वो कुछ देख रहे हैं तो। अगर मेरा बड़ा ज्यादा मन भी होगा कि मम्मा को ये बड़ा पसंद, तो मैं अगर छोड़ के सत्संग में बैठ जाती हूँ, जैसे अभी ये हुआ, तो मेरे बच्चों को पता नहीं पापा आप अंदर नहीं जाना, सत्संग चल रहा है। मतलब खुद ब खुद वो चीज हमारे घर में माहौल में, मेरी जिंदगी में तो आई, बाकी फैमिली की जिंदगी में भी आ गई। तो यही है, सत्संग बहुत जरूरी है। तो ये सारी बातें जो गीता ज्ञान है, ये हमें सत्संग से मिल रहा है। मैं अपने आप को तो बड़ा बड़भागी मानती हूँ कि मैं सत्संग की एक स्टूडेंट हूँ, एक भागवत की स्टूडेंट हूँ। जब मतलब मुझे ये ट्रैक मिला सत्संग का, तो मैं अपना बताऊं तो मेरे को ऐसे सच में होता है कि भगवान जी ने मुझे चुना। तो मैं आज भी भाई दूज पे गई हुई थी, मेरे को वहीं पे मैसेज मिला कि मुझे सत्संग में आज भजन बोलना है। ऐसे सत्संग की बात चली, ऐसे भाइयों का काम कुछ है, हमारा हाउस वाइफ है तो कुछ है, किसी के घर में कुछ चल रहा है, किसी का मतलब एक कॉमन बात थी कि सत्संग के लिए। फिर बहुत सारी चलती चलती बातें भगवान जी की, बहुत सी लीला सुनते हैं और सुनाते हैं, तो ये एक मेन टॉपिक हो गया। ऐसे हाल चाल पूछो आगे बात नहीं आती, वो अपने बिजनेस में बिजी हैं और हम अपनी लाइफ में, तो ये एक कॉमन बात थी। तो मेरे को इतना अच्छा लगा मन से कि नहीं भगवान, मैं अपने भाई को कह रही थी भाई देख मैं कितनी बड़भागी हूँ कि भगवान ने मेरे को चुना है कि मैं सत्संग सुनती हूँ। मुझे बड़ा बड़ा प्राउड होता है। थैंक्स टू ईशा जी, मोना जी, निखिल जी, मैं तो उनको बड़ा धन्यवाद दी हूँ। जैसे अर्जुन को भगवान ने गीता ज्ञान दिया, ऐसे हमें भगवान जी निखिल जी को भी चुन गए, तो उनके माध्यम से मोना जी आप, तो मुझे बड़ा ऐसे होता है कि देखो कितने अच्छे कर्म है, कितने बड़े भाग्य है जो भगवान जी का गीता ज्ञान इतने सारे लोगों में, देखो इनके भाग्य कैसे होंगे। हरी हरी बोल। अभी मैं अपने भजन की तरफ बढ़ती हूँ। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। तेरी अखियां हैं जादू भरी बिहारी जी, मैं कब से खड़ी। तेरी अखियां हैं जादू भरी बिहारी जी, मैं कब से खड़ी। बिहारी जी मैं कब से खड़ी, सुन ले मेरे श्याम सलोना, तूने मुझे पर कर दिया टोना। सुन ले मेरे श्याम सलोना, तूने मुझे
तुझ पर कर दिया टोना, कर दिया टोना, मेरी टूटे ना तुमसे लड़ी। बिहारी जी मैं कब से खड़ी, तेरी अखियां हैं जादू भरी। बिहारी जी मैं कब से खड़ी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी। ऐसा ठाकुर और न पाया, तुमसे ही मैंने बिरहा लगाया, तुमसे ही मैंने बिरहा लगाया। मैं तो तेरे ही द्वार पड़ी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी। मेरी अखियां हैं तुझसे लड़ी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी। दया करो हे दास के स्वामी, बांके बिहारी मेरे अंतर्यामी। दया करो हे दास के स्वामी, बांके बिहारी मेरे अंतर्यामी। मेरी टूटे ना तुमसे लड़ी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी। मैं तो तेरे ही द्वारे पड़ी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी। मेरी अखियां हैं तुमसे लड़ी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी। तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी।
हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच किरण जी, ब्यूटीफुल भजन गाया आपने, थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स प्रेयर्स कर लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरी हरी बोल एवरीवन, हरी हरी बोल। गंगा मंदिर हर मन मंदिर, जय श्री राधे कृष्ण, हरी हरी।